हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब तो तेरे और प्रीति के बीच सब ठीक है? आयुष्मान ने उसका सवाल सुना और हामी भरते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, पहले से बेहतर है। अब वो काफी हद तक पुरानी प्रीति बन चुकी है, तू खुश है उसके साथ? रौनक का अगला सवाल सुनकर आयुष्मान मुस्कुरा उठा। कभी जिसके साथ जिंदगी बिताने के हसीन सपने देखे थे, आज वो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। और प्रीति, वो खुश है इस रिश्ते में? उसने तुझे और इस रिश्ते को दिल से अपना लिया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तू एक बार खुद उससे पूछ ले, आयुष्मान ने सहजता से जवाब दिया, जिस पर रौनक ने हामी भर दी। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर गंभीरता से अगला सवाल किया, तूने प्रीति के साथ साथ प्रेम के बच्चे को भी अपना लिया? पर अभी रौनक ने इतना ही कहा था कि आयुष्मान ने उसकी बात काटते हुए गंभीरता से कहा, प्रेम का नहीं, मेरा बच्चा है वो। आयुष्मान की बात सुनकर रौनक एक पल को बस उसका चेहरा देखता रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तेरा बच्चा है, पर जितनी आसानी से तूने उसे अपना लिया, आगे का रास्ता और उसकी परवरिश करना उतना आसान नहीं होगा। तू कितना ही बोल ले, पर उससे ये सच नहीं बदल जाता कि तू उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, स्टेप फादर है। और ये स्टेप शब्द खुद में एक बहुत बड़ा कलंक है, जो अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है। ये समाज ऐसा है कि अगर सगे बाप ने अपने बच्चे को जान से भी मार दिया, तब वो मुंह बंद रखेंगे, पर सौतेली माँ या बाप ने बच्चे की भलाई के लिए ही सही, लेकिन अगर उसे एक थप्पड़ भी मार दिया तो सबका मुंह खुल जाता है कि सौतेला बच्चा है, इसलिए ऐसा व्यवहार होता है उसके साथ। सगे माँ बाप भी अपने बच्चों में थोड़ा फर्क कर जाते हैं, पर उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन सौतेले माँ बाप फर्क न भी करें तब भी सबकी उंगलियाँ उन पर उठती हैं और उनके प्यार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तुझे बहुत संभल कर रहना होगा, बाकी लोगों को तो फिर भी हैंडल कर लेगा, पर अगर ये बात प्रीति के मन में बैठ गई तो तुम्हारा रिश्ता टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए तुझे एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा, ताकि ये सौतेहा शब्द तेरी जिंदगी, तेरे और प्रीति के रिश्ते में जहर न घोल सके। कहीं न कहीं रौनक अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और उसका कहा एक एक शब्द सच था। आयुष्मान भी उसकी बात ध्यान से सुनते हुए सब समझ रहा था। बीती रात प्रीति की कही बातें भी तो इसी ओर इशारा कर रही थीं, और आयुष्मान समझ रहा था कि सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं, ये समाज ऐसा ही है और उसके प्यार पर सवाल उठेगा ही। उसे भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई चूक ना हो, किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले और इन बातों का प्रीति, उनके रिश्ते और उनके बच्चे पर कोई असर ना पड़े। आयुष्मान ने उसकी पूरी बात बड़े ही ध्यान से सुनी, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या समझाना चाहता है, और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। मैं जानता हूँ कि तू सब संभाल लेगा, इतना तो विश्वास है मुझे अपने यार पर, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आयुष्मान भी मुस्कुरा दिया। इतने में प्रीति पानी और कोल्ड ड्रिंक के साथ स्नैक्स लेकर वहाँ चली आई। उसने ट्रे रौनक के सामने रखी और जैसे ही पीछे हटने लगी, रौनक ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी हमारे साथ बैठो। प्रीति की निगाहें अनायास ही आयुष्मान के तरफ घूम गईं, तो उसने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा कर दिया। प्रीति उसके बगल में आकर बैठ गई। रौनक, जो दोनों की इशारों इशारों में हुई बातचीत को नोटिस कर रहा था, उससे खामोश नहीं रहा गया। उसने तुरंत ही प्रीति को मुस्कुराकर कहा, क्या बात है प्रीति, तुम तो बिल्कुल एक आदर्श पत्नी बन गई, जो हर काम अपने पति से पूछकर करती है, उसकी कोई बात नहीं टालती। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इतनी बदल जाओगी। रौनक की बातें सुनकर प्रीति ने सिर उठाकर उसे देखा और गंभीरता से बोली, बढ़ली नहीं हूँ सर, पर जब कोई आपसे ज्यादा आपकी परवाह करे, आपका ख्याल रखे, तो उसकी बातें मानने में कोई बुराई तो नहीं? बिल्कुल कोई बुराई नहीं, पर हर काम करने से पहले पूछना, उस पर डिपेंडेंट होना भी तो ठीक नहीं। पर मैं हर काम करने से पहले इनसे नहीं पूछती, वो तो इन्होंने ही जाने को कहा था, इसलिए बैठने के लिए इनकी इजाज़त की ज़रूरत थी, प्रीति ने सहजता से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रौनक की मुस्कान गहरी हो गई। तुम्हें साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शुरू से यही चाहता था, और आज मेरा वो सपना हकीकत बनकर मेरे सामने बैठा है। वैसे इस नालायक ने बताया तुम्हें कि प्यार करता है तुमसे, या अब भी अपने दिल की बात दिल में ही छुपाकर बैठा है? रौनक का सवाल सुनकर प्रीति की निगाहें आयुष्मान के तरफ घूम गईं, जो उसे ही देख रहा था। प्रीति ने निगाहें वापस रौनक के तरफ घुमाई और मुस्कुरा कर बोली, एक नहीं, बहुत बार बताया है, और हर बार एहसास करवाते हैं ये कि कितनी मोहब्बत करते हैं ये मुझसे। तुम खुश हो इसके साथ? मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद आसान नहीं तुम्हारे लिए इस शादी और आयुष्मान को अपनाना, तो मैं बस जान, रौनक ने सवाल को जस्टिफाई करना चाहा। ये देखकर प्रीति मुस्कुरा उठी और उसकी बात काटते हुए बोली, आसान नहीं था सर, पर जब साथ में इतना चाहने वाला हमसफर हो, किसी का इतना प्यार मिले, आपको आपसे ज्यादा समझने वाला जीवन साथी आपको मिले, तो मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान बन जाता है। आप जानना चाहते हैं कि मैंने इन्हें और इनसे जुड़े रिश्ते को अपनाया या नहीं, और इनके साथ खुश हूँ या नहीं, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देती हूँ। इसके बाद वो एक पल को ठहरी और आयुष्मान की तरफ निगाहें घुमाते हुए कहना शुरू किया। शुरू शुरू में बस मजबूरी में इनका हाथ थामा था, पर अब दिल से स्वीकार किया है मैंने इन्हें अपने पति के रूप में। उनसे जुड़ा रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और मैं खुश हूँ कि मेरा रिश्ता किन्हीं परिस्थितियों में जुड़ा हो, पर इनसे जुड़ा। मैं खुश हूँ कि एक बार धोखा खाने के बाद ही सही, पर मुझे इनके रूप में एक समझदार, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिला, जिन्होंने मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को भी दिल से अपनाया। जितना खुश मैं इनके साथ रहती हूँ, उतना खुश पहले कभी किसी के साथ नहीं रही। बहुत अहमियत रखते हैं ये मेरी जिंदगी में। अब तो मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ सब इन्हीं से हैं। यही मेरे पति हैं और यही मेरा परिवार है, और मैं अपने इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हूँ। प्रीति का जवाब सुनकर रौनक संतुष्ट हो चुका था और आयुष्मान अधरों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए प्रीति को देखने लगा था, जो उसे ही देख रही थी। प्रीति की कही बातें आयुष्मान के दिल को धड़का गई थीं। लव कन्फेशन नहीं था ये, पर उससे कम भी तो नहीं था। दोनों इस कदर एक दूसरे की निगाहों में खोए थे कि उन्हें रौनक की मौजूदगी का भान तक न रहा। रौनक ने जब दोनों को यूं एकटक एक दूसरे की निगाहों में झांकते देखा तो उसकी मुस्कान गहरी हो गई। कुछ पल तो वो दोनों को खामोशी से निहारता रहा, फिर गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओ मैं भी हूँ यहाँ। प्रीति ने रौनक की आवाज़ सुनते ही हड़बड़ाहट में उस पर से अपनी निगाहें फेर ली और सिर झुका दिया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर आयुष्मान मुस्कुरा उठा। कहीं न कहीं जज्बात प्रीति के दिल में भी पनपने लगे थे, जिससे आयुष्मान पूरी तरह से अनजान नहीं था, और यही उसकी खुशी का सबब था। कुछ पल उनके बीच ऑकवर्ड सी खामोशी छाई रही। आयुष्मान प्रीति को देखकर मुस्कुराता रहा। प्रीति धड़कते दिल के साथ निगाहें झुकाए वहाँ बैठी रही और बेचैनी से अपनी उंगलियों को आपस में उलझाती रही। कुछ पल प्रीति को गौर से देखने के बाद रौनक ने आयुष्मान की तरफ निगाहें घुमाई। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, जिसके जवाब में आयुष्मान बस मुस्कुरा कर रह गया। हर बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हमारी आंखें और मुस्कान ही सब बयां कर जाती हैं। वैसे ही रौनक और आयुष्मान के बीच बिना शब्दों के आदान प्रदान के खामोशी से बातें हो गई थीं। अपने सवालों का जवाब पाकर रौनक की खुशी देखने लायक थी।
कुछ देर की खामोशी के बाद रौनक ने ही बात शुरू की। प्रीति, अब तो तुम्हारी आयुष्मान से शादी हो चुकी है और तुम मेरे जिगरी यार की बीवी हो, तो तुम्हें मुझे सर बुलाना चाहिए। रिश्ते में मैं तुम्हारा देवर लगा और तुम मेरी भाभी, तो इस रिश्ते को निभाते हुए आज से मैं आपको भाभी कहूँगा, और आप चाहे मुझे देवर कहिए या नाम से पुकारिए, मुझे दोनों में से किसी बात से कोई एतराज नहीं। प्रीति ने सहमति में सिर हिला दिया। नाश्ते के बाद उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट किया। फिर सालों बाद तीनों की महफिल जमी। पुरानी बातें धीरे धीरे बाहर निकलने लगीं, जिससे प्रीति रौनक के साथ फिर से पहले जैसे सहज होकर बातें करने लगीं। पहले तो आयुष्मान प्रीति की मौजूदगी में ज्यादातर शांत ही रहता था, पर अब वो भी बोल रहा था। रौनक और प्रीति की जोड़ी फिर जमने लगी थी। सारा दिन वो साथ रहे। रात को भी रौनक यहीं रुका, फिर सुबह वापस चला गया। उन्होंने साथ में एक यादगार रविवार बिताया, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए।